ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी पार्टियों से संसद में कृषि पर चर्चा करने की अपील की ताकि किसानों की भलाई के लिए काम आगे बढ़ाया जा सके। मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार संसद में किसानों के मुद्दों पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है।
किसानों का कल्याण मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है और कल्याण की कई योजनाएं सरकार चला रही है। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूं कि कम से कम वो आज चर्चा होने दें, चर्चा का मार्ग खोले, सार्थक बहस करें ताकि सही अर्थों में हम सब किसान कल्याण के कामों को आगे बढ़ा सकें।
सरकार ने कहा है कि भारत इस वर्ष टीबी मुक्त राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 2015 के तुलना में 2023 में टीबी के कारण होने वाली मौतों में भी 21% से अधिक की कमी आई है। उन्होंने कहा कि सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण देश में टीबी उपचार का दायरा 32% तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने टीबी के मामलों का पता लगाने के लिए 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 प्राथमिकता वाले जिलों में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान शुरू किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर से नकदी बरामद होने का मामला आज राज्यसभा में उठाया गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि वे सदन के नेता और विपक्ष के नेता से संपर्क करेंगे और सत्र के दौरान एक व्यवस्थित चर्चा कराएंगे। इससे पहले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि नकदी बरामद होने की घटना चौंकाने वाली है। उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ से न्यायिक जवाबदेही बढ़ाने का प्रस्ताव लाने के लिए सरकार को आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज दुष्कर्म के एक प्रयास के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए इसे अनुचित कहा है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस प्रकार की टिप्पणी से समाज में गलत संदेश जाएगा। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इससे गलत मानसिकता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार न्यायाधीश द्वारा की गई इस तरह की टिप्पणी का संज्ञान लेगी। महाराष्ट्र में नागपुर शहर में सोमवार की रात दो समुदायों के बीच भड़के हिंसा के बाद नागपुर के 11 क्षेत्रों में लगाए गए कर्फ्यू में से कल 8 क्षेत्रों में ढील दी गई, जबकि कोतवाली, गणेशपेठ और तहसील पुलिस स्टेशन के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू है। पुलिस आयुक्त डॉ रविन्द्र सिंघल ने बताया कि पुलिस ने अब तक इन घटनाओं में शामिल लगभग 84 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को नागपुर जिला अदालत के समक्ष पेश किया जा रहा है। अमेरिका की संघीय अदालत के न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है कि सामाजिक सुरक्षा प्रशासन ने एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग को लाखों अमरीकियों के रिकॉर्ड तक व्यापक पहुंच प्रदान करके गोपनीयता कानूनों का उल्लंघन किया है। अदालत ने डेटा शेयर करने पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि धोखाधड़ी से लड़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह गोपनीयता कानूनों की कीमत पर नहीं किया जा सकता। बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध हटा दिया है। लीग में अधिकांश टीमों के कप्तानों ने इस कदम का समर्थन किया है। आईपीएल इस प्रतिबंध को हटाने वाली पहली प्रमुख क्रिकेट लीग बन गई है। आईसीसी ने कोविड महामारी के दौरान 2020 में स्वास्थ्य एहतियात के तौर पर गेंद पर लार लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कल से शुरू होने वाली आईपीएल से पहले मुंबई में कप्तानों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। भारत ने 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की आधिकारिक तौर पर दावेदारी पेश की है। भारत ने ऐसा कर वैश्विक खेल आयोजनों की मेजबानी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ की अध्यक्ष पीटी उषा के नेतृत्व में खेलों के आयोजन के लिए पेश किया गया दावा दर्शाता है कि अहमदाबाद मेजबानी के लिए तैयार है। एसआरएफआई इंडियन टूर 2025 स्क्वाश के फाइनल में आज भारत की आकांक्षा सानलुखे का सामना भारत की ही अनाहत सिंह से होगा। ये मैच दोपहर बाद 2:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।